आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ रहे थे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 17 संस्कृति। इसके लेखक हैं भदत आनंद कौशल्यायन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कि ये कौशल्यायन जी ने एक निबंध लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो दो शब्द जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने आसपास सुनते रहते हैं जो कि हैं संस्कृति और सभ्यता। लेकिन जहां बात आती है इसका अर्थ बताने की, वहां हम इसका अर्थ नहीं बता पाते या इसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं। तो वही लोगों को उसका अर्थ समझाने के लिए ये निबंध लेखक ने लिखा। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो योग्यताएं होती हैं, जिसके बल पे, जिसके सहारे वो कुछ नया करता है ना, लोगों को कुछ सिखाता है या फिर लोगों के लिए एक नई खोज करता है, तो ये हो जाती है संस्कृति। और इसी संस्कृति के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो है वो संस्कृति का, इस योग्यता का उपयोग करके बनता है सभ्य, यानी वो कहलाती है सभ्यता। वहीं अगर मनुष्य की योग्यता मनुष्य के ही विनाश के लिए काम करने लगे, उसके कल्याण के लिए काम ना करे, उसकी भलाई के लिए कोई काम ना करे, तो ऐसी योग्यता को हम संस्कृति ना कह के असंस्कृति कहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें असभ्यता मिलेगी और मनुष्य असभ्य हो जाएगा। यही सब हमने इस निबंध में पढ़ा था और अब हमें करने थे इसके प्रश्नोत्तर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स के पेज नंबर 130 पर आ जाइए, 130। ठीक है, यहाँ पे शुरू करती हूँ, पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ, देखिएगा। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? ठीक है, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति, ये जो दो शब्द हैं, इनकी सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है, यानी लोगों को अभी तक इनका अर्थ क्यों नहीं समझ में आ पाया है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, ये जो दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति, इसका प्रयोग हम भले ही बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन हर व्यक्ति अपने हिसाब से इनका उपयोग करता है, इनका प्रयोग मनमाने ढंग से करता है, जिसके मन में जो अर्थ समझ में आता है वो उसी तरीके से इसका प्रयोग करने लगता है। वही अगर इन शब्दों के साथ कुछ विशेषण लग जाते हैं, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, तो ये जो शब्द हैं इनके अर्थ और बदलने लगते हैं, लोग उसका अर्थ और गलत समझने लगते हैं, जो वास्तविक अर्थ है वो हमारे पास पहुंच ही नहीं पाता है और लोग इसे गलत समझने लगते हैं। इसीलिए अपने मनमाने तरीके से सोचने के कारण या इन विशेषणों के उपयोग के कारण जो समझ है वो बिगड़ जाती है। इसीलिए लेखक जो हैं वो बोलते हैं कि लोग इन शब्दों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इनकी एक स्थायी सोच विकसित नहीं हो पाई है और लेखक ने भी एक कोशिश मात्र की है कि वो हमें इन दो शब्दों का अर्थ समझा सकें, है ना, हम अच्छे तरीके से इनका अर्थ समझ सकें, इस बात की एक कोशिश भर की है लेखक ने। आगे देखिए प्रश्न 2, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो आग, अगर आग नहीं होती, आग का आविष्कार नहीं हुआ होता, तो आप सोचिए कि जब अंधेरा होता तो हमें रोशनी नहीं मिलती, है ना, हमें खाना पकाने को नहीं मिलता, आग के बिना जीवन बहुत ही असुविधाजनक हो जाता है ना, जी तो लोग पहले भी रहते हैं आग के आविष्कार होने से पहले भी, लेकिन आग का आविष्कार होने के बाद हमारा जो जीवन है वो काफी सरल हो गया, सुविधाएं बढ़ गई। जैसे तो इसके उत्तर में आप इसे लिख सकते हैं, आग का जो आविष्कार है वो बहुत ही बड़ा आविष्कार है। क्यों? क्योंकि उस समय में हमें, मैंने मनुष्यों को, रोशनी की जरूरत थी, खाना पकाने की जरूरत थी और इसी कारण उसने आग का आविष्कार किया। उस समय में मनुष्य की बुद्धि शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ था ना जितना अभी हो चुका है, इसीलिए उस समय में जो मानव था उसके लिए वो आग एक बहुत बड़ी खोज थी। और इसके पीछे क्या स्रोत रहे होंगे, ये हम लिख सकते हैं, अंधेरे में जब रात हो जाती थी और मनुष्य कुछ देख नहीं पाता था, तो उस समय उसने रोशनी की जरूरत महसूस की होगी। पहले वो कच्चा मांस खाता था, लेकिन जैसा हमने सुना है कि एक बार गलती से दो पत्थर रगड़ने से आग जल गई, चिंगारी लग गई और उसमें उसके मांस का टुकड़ा गिर गया। जब उसने खाया तो उसे वो और अच्छा लगा, तो उसे समझ में आया कि खाने को अगर पका कर खाया जाए तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो ये जो हमारी भूख होती है, हमें रोशनी की जरूरत महसूस होती है, ये सारी चीजें मनुष्य को आग खोजने के लिए प्रेरित किया इन चीजों ने। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 131 पे। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक ने संस्कृत व्यक्ति की क्या परिभाषा बताई है, ये हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, योग्यता और प्रतिभा के बल पे कुछ नया करने की क्षमता रखता हो, है ना, कुछ नया करता हो, दूसरों को कुछ सिखाता हो, वो व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और जिस व्यक्ति में ये योग्यता या बुद्धि जितनी अधिक होगी, वह उतना ही ज्यादा संस्कृत होगा। ठीक है, जैसे कि लेखक ने एक उदाहरण दिया था, वही उदाहरण आप इस उत्तर में लिख सकते हैं। लेखक ने क्या उदाहरण दिया था कि न्यूटन को हम संस्कृत व्यक्ति कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। उस समय लोगों को नहीं पता था ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, और जब सेब को गिरते हुए देखा तभी न्यूटन को समझ में आया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, और फिर उसने लोगों के लिए इस सिद्धांत को समझा और लोगों को समझाया। इसीलिए न्यूटन को हम संस्कृत मानव कह सकते हैं। अब आज जो बच्चे विज्ञान पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें काफी चीजें ऐसी पता होंगी जो न्यूटन को नहीं पता थी, उस समय उनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सभ्य हो सकते हैं, संस्कृत नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ नया नहीं खोजा है, बल्कि जो खोजी हुई चीजें हैं, जिन चीजों का आविष्कार हो चुका है, जो ऐसी चीजें हैं, उन्हीं का उपयोग करके उनके पास बस जानकारी है, इसलिए वो सभ्य हैं। अगर उस जानकारी को उन्होंने खुद खोजा होता तो वो भी संस्कृत होते। तो वास्तव अर्थों में संस्कृत व्यक्ति वही है जो अपनी बुद्धि और योग्यता का उपयोग करके कुछ नया खोजे या कुछ नया आविष्कार करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 4, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते, क्यों? तो इसके उत्तर में आप क्या बताएंगे? न्यूटन ने अपनी बुद्धि का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये बल क्या होता है, हम सब क्यों धरती पर ऐसे टिके रहते हैं, इस रहस्य को उन्होंने, इस पहेली को सुलझाया। कुछ नया खोजा, कुछ नया आविष्कार किया, इस कारण न्यूटन को हम संस्कृत मानव कह सकते हैं। उस समय में जो जानकारी किसी को नहीं थी, वो जानकारी न्यूटन खोज कर लाए, इसलिए न्यूटन हो गए संस्कृत मानव। अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को न्यूटन द्वारा सिद्धांत, जो न्यूटन ने बताए या जो ज्ञान की और बातें हैं, वो सब पता हैं, लेकिन वो संस्कृत मानव नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी के द्वारा दी गई जानकारी को ही उपयोग किया है, है ना, उसी जानकारी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी जानकारी को समझ रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि शक्ति के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर कुछ भी नई जानकारी नहीं खोजी है, कुछ नया आविष्कार नहीं किया है, इसीलिए वो सभ्य व्यक्ति कहला सकते हैं, लेकिन संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकते। संस्कृत व्यक्ति वही होगा जो अपनी योग्यता का उपयोग करके इस समाज के लिए कुछ नया ढूंढ कर लाता है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार क्यों किया होगा, क्या सोचकर किया होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, अपने शरीर को ढकने की जरूरत जब मनुष्य को महसूस हुई होगी तब उसने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। क्यों उसने महसूस किया होगा? कि अगर हम अपने शरीर को कपड़ों से ढककर रखते हैं तो सर्दियों में हम ठंड से बच सकते हैं, है ना, गर्मियों में लू से बच सकते हैं, बारिश में भीगने से बच सकते हैं। इसी वजह से सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और बाद में धीरे धीरे मनुष्य ने ये महसूस किया होगा कि अपने शरीर को ढककर हम अच्छे लगते हैं, और आवश्यकता अनुसार अगर हम कपड़ों को अपने तरीके से सिलने लगे तो इससे हम सज भी सकते हैं। तो अपने आप को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए या सजाने के लिए या अच्छा दिखाने के लिए हम मनुष्य ने सुई धागे का आविष्कार किया होगा। और देखिए, वो संस्कृति थी कि कुछ मनुष्यों ने अपनी योग्यता से बुद्धि कौशल के बल पे सुई धागे का आविष्कार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज अगर मनुष्य कपड़ा पहन के घूमता है तो वो सभ्य मानव कहलाता है। वही अगर हम पुराने समय की बात करें, जब मनुष्य कपड़े नहीं पहनता था, अपने आप को बस किसी जानवर की खाल से या पत्तों से ढक लेता था, तो उस समय के मानव को अगर हम देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, उस समय मानव असभ्य था, अब मानव में सभ्यता आई है। और ये सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। तो जैसा कि लेखक ने जो पूरा चक्र समझाया है कि संस्कृति के बल पे ही सभ्यता का जन्म मिलता है, वो हमें इससे आसानी से समझ में आ जाता है, है ना। आगे देखिए दूसरा प्रश्न संख्या 6। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, किन्हीं दो प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब। यहां आपको प्रश्न 6 के दो भाग दिए गए हैं, क और ख। ऐसा प्रसंग बताना है जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। तो जैसा कि इस निबंध में लेखक ने लिखा है कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है, यानी जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता या जिसे बांटा नहीं जा सकता, ऐसी वस्तु है मानव संस्कृति। लेकिन आपको अब ऐसे कोई प्रसंग बताने हैं जिसमें आपको लगता हो कि यहाँ पे मानव संस्कृति को विभाजित करने की, बांटने की कोशिश की गई हो। ठीक है, चेष्टा यानी कोशिश की गई हो। तो इस पे इसके उत्तर में आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि हमारे समाज में अक्सर मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की जाती हैं, जैसे धर्म के नाम पे, है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, इतने धर्म हैं और हर धर्म के अलग अलग लोग, अलग अलग अनुयायी हैं, और इसी धर्म के नाम पे, इसी संप्रदाय के नाम पे हम लोगों को आपस में बांट देते हैं। तो हुई ना मानव संस्कृति का विभाजन हुआ, और इसका परिणाम तो इतना भयावह निकला, आपने अपने ही देश में देखा, हमारे देश के दो हिस्से हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। एक धर्म के नाम पे हिंदुस्तान बना दिया गया और एक धर्म के नाम पे पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन क्या अभी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही हैं, मुसलमान नहीं हैं, सिख नहीं है, ईसाई नहीं है? या पाकिस्तान में अभी सिर्फ मुसलमान ही हैं क्या, वहां हिंदू नहीं है? अभी भी हर जगह हर धर्म के लोग हैं, लेकिन बस कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के चलते इन दो देशों का बंटवारा कर दिया। ठीक है, तो ये पहला उदाहरण हुआ मानव संस्कृति के विभाजन का। दूसरा, जब धर्म के नाम पे बंट जाते हैं तो एक ही धर्म के अंदर अलग अलग वर्ण व्यवस्थाएं हो जाती हैं, है ना, या अलग अलग जातियां हो जाती हैं, तो ये भी मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की जाती है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म का उदाहरण ले तो मैं आपको बताती हूँ, हिंदू धर्म में 4 वर्ण माने जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके आधार पे हम लोगों को बांट देते हैं, तो ये भी मानव संस्कृति का विभाजन हो गया। ठीक है, आप ये दो प्रसंग, ये दो उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपको बताने हैं कौन से प्रसंग, अगला आपको बताना है जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया। ठीक है, अब आपको विभाजन का नहीं बताना, अब आपको बताना है कि मानव संस्कृति कब एक रही है। तो उसमें आप बताएंगे लेखक के निबंध से ही आप उदाहरण ढूंढ सकते हैं, आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेखक ने जो दो महत्वपूर्ण लोग बताए, सिद्धार्थ और कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने, जैसे कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन दुखों में क्यों बिता दिया, क्योंकि वो संसार के जो मजदूर हैं या शोषित वर्ग हैं जिनका शोषण होता है, उनको सुखी करने के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हुए ही बिता दिया अपना पूरा जीवन। तो यहाँ पे मानव संस्कृति ने एक होने का प्रमाण दिया। वहीं सिद्धार्थ ने अपना घर, अपना राजपाट, सब धन वैभव सब छोड़ दिया था मानव के कल्याण के लिए, ताकि मनुष्यों की भलाई हो सके। और ये सिद्धार्थ कौन है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? भगवान गौतम बुद्ध के नाम से। तो यहाँ पे भी हमें पता चला कि मनुष्यता की ही जीत हुई। आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उससे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। अब यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है, इसका आपको आशय यानी अर्थ स्पष्ट करना होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, मनुष्य जो है वो ऐसा प्राणी है जिसने हमेशा अपने बारे में सोचा है, अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए ही वो दिन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और उसने अपने लिए, मानव समाज के लिए ऐसे कई आविष्कार किए हैं जो हमारा हित कर सके, हमें लाभान्वित कर सके। इसीलिए जो आविष्कार होते हैं, जो मनुष्यों की कल्याण से, मनुष्यों की भलाई से जुड़े होते हैं, इसे हम उनकी संस्कृति कहते हैं। लेकिन ये जो आविष्कार करने की योग्यता है, जो शक्ति मनुष्य के पास आ गई है, या उसके अंदर जो प्रेरणा होती है कि मुझे कुछ नया खोजना है, ये प्रवृत्ति जब उल्टा काम करने लगे, यानी मनुष्य की भलाई के बजाय मनुष्य को बर्बाद करने लगे, उसके कल्याण के बजाय उसका विनाश करने लगे, तो इसे हम संस्कृति असंस्कृति में से क्या कहें? तो आप लिखेंगे, जाहिर सी बात है, ये इसे हम असंस्कृति कहेंगे। ऐसी भावनाओं को, ऐसी योग्यताओं को जो मनुष्य का विनाश करे, हम संस्कृति कह ही नहीं सकते। और इसे इसी असंस्कृति के बल पे जो मनुष्य है वो असभ्य हो जाता है, यानी असंस्कृति का परिणाम असभ्यता निकलता है। ठीक है, आगे आइए रचना और अभिव्यक्ति पर। एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है, आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं, लिखिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी कल्पना को विस्तार देने के लिए, आप कितना सोच सकते हैं उसके लिए। देखिए, अब तो आपने निबंध पढ़ लिया है, तो काफी कुछ आपको सभ्यता या संस्कृति के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन जब तक आपने निबंध नहीं पढ़ा था, केवल ये दो शब्द पढ़े थे, तब आप इन शब्दों को कैसे जानते थे, इनका क्या अर्थ निकालते थे, ये आपको बताना होगा। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति को आप क्या समझते थे, ये आपको बताना होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, वैसे तो आप इसको अपने विचार से लिखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट देने के लिए समझा देती हूं। तो आप लिख सकते हैं, ये जो संस्कृति है, इसका प्रयोग हम बहुत अर्थों में कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी है, तो भारतवर्ष की संस्कृति में क्या आया, यहाँ के लोगों का व्यवहार, रहने का तरीका, है ना, यहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, व्यवहार, ये सब हो जाता है संस्कृति। और ये संस्कृति जीवन का वो कलात्मक हिस्सा है जो जीवन को और विकसित बनाती है, जीवन को और अच्छा बनाती है, इसीलिए हम संस्कृति को इसी रूप में देखते हैं। जैसे लेखक ने बताया है कि सभ्यता और संस्कृति है, इनका प्रयोग हम अनेक अर्थों में कर सकते हैं, तो अभी तक हमें इसका यही अर्थ समझ में आता था कि ये रहने सहने का तरीका, खान पान का तरीका, या पहनने ओढ़ने का तरीका, बोलने का तरीका, यही सब संस्कृति कहलाती है। और जहां बात आती है सभ्यता की, तो सभ्यता संस्कृति का ही एक विकसित रूप है। जब संस्कृति अपने उच्च स्तर पे पहुंचने लगती है, ऊंचे चरण पे पहुंचने लगती है, तो वो सभ्यता बनती जाती है। ठीक है, तो वही लेखक वाली बात आएगी कि संस्कृति का परिणाम होता है सभ्यता, है ना। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में जैसे कि आपको पता है व्याकरण संबंधी प्रश्न होते हैं। यहाँ आपको एक ही प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित सामसिक पदों का विग्रह करते हुए समास का भेद भी लिखिए। यानी यहाँ पे जो आपको सामासिक पद दिए गए हैं, इन समासों को विग्रह करके अलग अलग लिखना है और कौन सा भेद है इसमें, ये भी आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 8 शब्द दिए गए हैं। पहला देखिए, गलत सलत। तो जब इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा गलत और सलत। आप कहीं पर नोट करते रहिए, गलत सलत का विग्रह हो जाएगा गलत और सलत, और इसका भेद हो जाएगा द्वंद समास। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा शब्द है महामानव। ठीक है, तो महामानव हो जाएगा, महान है जो मानव, महान है जो मानव। इसमें भेद लिखेंगे आप कर्मधारय समास। ठीक है, इसका भेद होगा कर्मधारय समास। अगला शब्द देखिए, हिंदू मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम का विग्रह भी होगा हिंदू और मुस्लिम, और भेद हो जाएगा द्वंद समास। चौथा शब्द देखिए, सप्तऋषि। इसका विग्रह करने पे आएगा सात ऋषियों का समूह, और भेद हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, सात ऋषियों का समूह, भेद द्विगु समास। अगला देखिए, आत्मविनाश। आत्मविनाश इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा आत्मा का विनाश, इसमें तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? तत्पुरुष समास होगा। अगला शब्द है पद दलित। ठीक है, पद दलित विग्रह करेंगे तो बन जाएगा पद से दलित, और इसका भेद हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला शब्द देखिए, यथोचित, यानी जो उचित हो, और इसका समास का भेद हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आठवां शब्द देखिए, सुलोचना, यानी सुंदर लोचन है जिसके, लोचन होते हैं आंखें, तो जिसकी आंखें सुंदर हैं उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है सुलोचना। सुंदर लोचन है जिसके, यानी भेद लिखेंगे आप इसका कर्मधारय समास। समझ में आ गए होंगे आपको आठों शब्द। फिर से जल्दी जल्दी एक बार रिपीट कर दे रही हूं ताकि अगर आपने नोट किया है तो आपको समझ में आ जाए, कहीं गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, पहला गलत सलत, गलत और सलत द्वंद समास। दूसरा महामानव का, महान है जो मानव, कर्मधारय समास। हिंदू मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम द्वंद समास। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, द्विगु समास। आत्मविनाश, आत्मा का विनाश, तत्पुरुष समास। पद दलित, पद से दलित, तत्पुरुष समास। यथोचित, जो उचित हो, अव्ययी भाव समास। सुलोचना, सुंदर लोचन है जिसके, कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये आठों शब्दों के समास आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब है पाठेतर सक्रियता। इसमें आपको दो बिंदु दिए गए हैं, देखिए क्या क्या है। पहला है, स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। ठीक है, तो ये वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि वाद विवाद प्रतियोगिता क्या होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। इसमें आप कैसे करेंगे, अपने कक्षा के दो समूह बनाएंगे, है ना। जितने भी बच्चे आपकी कक्षा में हैं उन्हें दो हिस्सों में बांट लेंगे। एक समूह होगा जो इसके पक्ष में बोलेगा, इसके फेवर में बोलेगा। ये जो टॉपिक दिया गया, जो विषय दिया गया है कि स्थूल भौतिक कारण ही आविष्कारों का आधार नहीं है। और एक होगा इसके विपक्ष में बोलेगा, यानी इसके अगेंस्ट में बोलेगा। ठीक है, एक फेवर में, एक अगेंस्ट में, पक्ष और विपक्ष, ऐसे दो टीमें बन जाएंगी। तो एक को वो कारण बताने होंगे कि जो भी आविष्कार होते हैं उसका कारण केवल स्थूल भौतिक कारण नहीं है, और एक को मानना होगा नहीं, जो भी आविष्कार होते हैं उनका जो प्रेरणा स्रोत है वो स्थूल भौतिक कारण होते हैं। जैसे आधे बच्चे ये विचार रखेंगे कि जब हमें भूख लगी है ना, खाना पकाने की जरूरत महसूस हुई या रोशनी की जरूरत हुई तो आग का आविष्कार कर लिया गया, कपड़े पहनने की, शरीर ढकने की जरूरत महसूस हुई तो सुई धागे का आविष्कार कर लिया गया, है ना। तो ये हमारी जरूरतें थी इसीलिए हमने ये आविष्कार किया। ऐसे ही कोई भी आविष्कार होता है, जैसे कि पहले बहुत दूर जाने के लिए साधन नहीं होते थे, या तो व्यक्ति पैदल जाता था या फिर बैलगाड़ी, तांगा, ऐसे साधनों से जाता था, तो उसे बहुत समय लगता था। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे अपने आप को विकसित किया और आने जाने के यातायात के साधन विकसित होते चले गए। साइकिल बनी, स्कूटर बना, मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, बस बनी, ट्रेन बनी, तो अब हम कितनी भी दूरी होती है कुछ भी थोड़े से समय में पहुंच जाते हैं, है ना। पहले जो लोग हमसे दूर रहते थे, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले या रिश्तेदार, उन्हें हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र लिखना पड़ता था, है ना। वो पत्र आज भेजा है, अगले 3-4 दिन बाद पहुंचेगा, फिर वहां से कोई जवाब लिखेगा, वो 3-4 दिन बाद आएगा, तो ऐसे 10-12 दिन में कहीं बातें हो पाती थी। लेकिन आज फोन के इस्तेमाल से, टेलीफोन के इस्तेमाल से हम लोग कुछ ही मिनटों में अपनी सारी बातें झटपट कर लेते हैं। तो ये क्या है? आविष्कार। और आपने सुना भी होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब भी मनुष्य को किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, कोई जरूरत महसूस हुई, तो उसने आविष्कार किए हैं, नई नई खोजें उसने की हैं। ठीक है, एक जो टीम होगी वो ये बातें कह सकती है। अब अगली टीम इसके विपक्ष में क्या कहेगी? अगर ऐसा ही है तो जिस व्यक्ति ने तारों की खोज की, ग्रहों की खोज की, उसे क्या आवश्यकता थी? वो तो आराम से उसकी जिंदगी चल रही थी ना। तारे, अगर हमें पता नहीं चलते कि तारों को तारा कहते हैं या इनका क्या उपयोग है, विज्ञान नहीं पढ़ा होता, तो कुछ जिंदगी में रुकावट नहीं आ रही थी। लेकिन ये मनुष्य की योग्यता थी, उसका बुद्धि कौशल था कि उसे हर चीज जाननी है, हर चीज के प्रति उसके मन में एक कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, और हर चीज वो जान के मानव सभ्यता को और संस्कृत करना चाहता है, मनुष्य को और जानकारी देना चाहता है, और कुछ सिखाना चाहता है। हमेशा कुछ ना कुछ नया तैयार करना है, नया जानना है, नया बताना है, ये जो चीज है। तो इसमें स्थूल भौतिक कारण की जरूरत नहीं होती है, बिना किसी आवश्यकता के भी मनुष्य आविष्कार कर सकता है। अब आप इनमें से जिस भी विचार से सहमत हो उस विचार की तरफ आप हो जाइए, ठीक है। ऐसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अपनी कक्षा में ही कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उन खोजों और आविष्कारों की सूची तैयार कीजिए जो आपकी नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खोजें हुई हैं जो कि पहले नहीं थी, तो ऐसी आपकी नजर में कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि अगर इनका आविष्कार हो गया तो सही हुआ, इनके बिना जीवन कितना मुश्किल हो जाता, या फिर इनके बिना तो जीवन सोचा भी नहीं जा सकता, है ना। तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले टेलीफोन, है ना। टेलीफोन नहीं होता तो हम अपने लोगों से बातें नहीं कर पाते, है ना। सुई धागे का, आग का उपयोग तो है ही महत्वपूर्ण। फिर घर, पक्के घर बनाने का, पहले तो मनुष्य गुफाओं में रहता था, घर का भी आविष्कार ही हुआ है, है ना। फिर पेन पेंसिल, लिखने के तरीके, कॉपी किताब, इससे पहले पत्तों पर लिखता था। छोटी छोटी चीजें आप अपने आसपास देखेंगे ना, ये कॉपी किताब जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये भी नहीं थी, हमारे पेन पेंसिल नहीं थे, हमारे घर नहीं थे, हमारे कपड़े नहीं थे, ये सारी चीजों में जो विकसित हुआ है मनुष्य, ये सारी ही चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। और इसके अलावा फिर आप लिख सकते हैं यातायात के साधन विकसित हुए, टेलीफोन जैसी चीजें विकसित हुई, और इस वजह से मनुष्य की संस्कृति और ज्यादा परिष्कृत होती चली गई। अब बात करते हैं शब्द संपदा की। शब्द संपदा यानी कि पाठ के दौरान जो कठिन शब्द हमने पढ़े होंगे उनके सरल अर्थ यहाँ पे आपको बताए गए हैं। पहला है आध्यात्मिक, यानी परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, साक्षात आंखों के सामने, प्रत्यक्ष या सीधे, आविष्कर्ता, आविष्कार करने वाला, जिसने कोई आविष्कार किया हो, परिष्कृत, जिसका परिष्कार किया गया हो, शुद्ध किया गया हो, साफ किया गया हो, है ना, अपने शुद्ध रूप में जो चीज होती है वो होती है परिष्कृत। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 132 पर। अनायास, बिना प्रयास के या आसानी से, कदाचित, कभी या शायद। शीतोष्ण, ठंडा और गर्म, शीत यानी ठंडा, उष्ण यानी गर्म, ठीक है, ये हो गया ठंडा और गर्म। निठल्ला यानी बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का खाली बैठा हुआ, वो होता है निठल्ला। मनीषियों, विद्वानों या विचारशीलों। वशीभूत, वश में होना, अधीन होना। तृष्णा यानी प्यास या लोभ। अवश्यभावी यानी जिसका होना निश्चित हो, जिसका होना तय हो। अविभाज्य, जो बांटा ना जा सके, जिसका विभाजन संभव ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके शब्दार्थ भी पूरे होते हैं, और ये आपका पाठ 17 जो कि एक निबंध था संस्कृति, ये पूरा होता है। लेखक बदत आनंद कौशल्यायन द्वारा ये जो निबंध था बहुत ही रोचक भाषा में लिखा गया था, जिसे पढ़कर हमें बोरियत महसूस नहीं हुई, बल्कि हमने कुछ नया सीखा, नया जाना, और पढ़ के हमें अच्छा महसूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।